أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی، مخلوق کے شر سے اور رات کے شر سے جب کہ وہ آ جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب کہ وہ حسد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اور چھپ جائے. جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں، جینوں میں سے اور انسانوں میں سے. محترم حضرات، گزشتہ کل ومن شر حاسد اذا حسد کے متعلق آپ حضرات کے سامنے تھوڑی بہت تفسیر عرض کی تھی کہ حسد کتنا خطرناک گناہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اختتام پر جب قرآن ختم ہو رہا ہے تو اس کے اختتام پر ایسے آدمی سے اور ایسے آدمی کے شر سے پناہ مانگنے کا ہمیں طریقہ سکھایا، ہمیں تلقین کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم حاسد کے شر سے پناہ مانگو. حاسد کا شر اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی مذموم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حسد سے روکے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کرے، اور ایسی پریکٹس کرے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائے. ان چیزوں کا نکلنا کوئی آسان نہیں، لیکن آدمی اگر محنت کرے، آدمی مجاہدہ کرے، آدمی اپنے آپ پر محنت کرے، تو انشاءاللہ حسد کی جو بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری، ہمارے اندر سے آسانی سے نکل سکتی ہے، بہت ہی آسانی سے نکل سکتی ہے. میں نے گزشتہ کل حسد کو نکالنے کے اور حسد کو اپنے اندر سے ختم کرنے کے علماء کرام نے کچھ طریقے لکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. پہلا طریقہ تو یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کو جو تُو نے دولت دی ہے وہ دولت تو اور زیادہ بڑھا دے، اس کی لوگوں کے درمیان تعریف کرے، اس کی اچھائیوں کو دیکھے. اس کے اندر کوئی برائی ضرور ہوگی، لیکن اس کی اچھائیوں کو دیکھے کہ اس کے اندر فلاں فلاں اچھائی ہے. اور بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر حسد کو نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی آدمی کے اندر کوئی اچھی بات دیکھیں، کوئی اس کے پاس نعمت دیکھیں، اور اس نعمت کو دیکھ کر اگر ہمارے اندر حسد پیدا ہو تو آدمی یہ دیکھیں کہ اس کو اللہ نے فلاں نعمت تو دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اللہ نے نعمت دی ہے، مجھے بھی اللہ نے نعمت دی ہے، تو اپنی نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، مجھے بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں. اگر اس طرح غور کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کو شکر کی توفیق ہوگی اور حسد اس کے اندر سے نکلے گا. جب وہ ملے تو سلام کرے، لوگوں کے درمیان اس کی تعریف کریں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے اندر فلاں چیز بڑی اچھی ہے، इस तरह अगर तारीफ करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे अंदर से सामने वाले के बारे में हसद निकल जाएगा, और जब एक के बारे में हसद निकलेगा तो इंशाल्लाह किसी और पर हमारे दिल को, हमारे नफ्स को किसी और पर हसद करने की जरूरत नहीं होगी कि ये तो मुझे सजा देता है, मैं तो चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा हसद करे, ये तो हसद तो कर छोड़ रहा है लेकिन साथ साथ मुझे सजा भी दे रहा है कि मुझे सलाम भी करनी पड़ती है, मुझे तारीफ भी करनी पड़ती है, मुझे हदिया भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें नफ्स जब देखेगा तो वो किसी पर हसद करने की नहीं सोचेगा। बरहाल उलमाए किराम ने ये भी लिखा है, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आदमी हसद करता है गोया वो अल्लाह के देन पर और अल्लाह की तकसीम के ऊपर मोतरीज है, वो एतराज करता है अल्लाह की तकसीम पर, एतराज करता है कि किसी आदमी को इल्म दिया, एक इल्म वाले से दूसरा इल्म वाला हसद करता है तो वो अल्लाह पर एतराज करता है कि उसको दिया मुझे क्यों नहीं दिया, उसको क्यों दिया और उसको मुझको क्यों नहीं दिया। किसी आदमी की दौलत देखकर हमें हसद पैदा होता है तो गोया हम अल्लाह की देन पर एतराज करते हैं, अल्लाह की तकसीम पर हम सवाल करते हैं, अल्लाह की तकसीम पर हम सवाल करते हैं कि अल्लाह ने उसको दौलत क्यों दी हमें क्यों नहीं दी, और अल्लाह ने उसको दौलत क्यों दी। यानी अल्लाह की निजाम में आदमी यूं समझता है कि अल्लाह का निजाम बराबर नहीं है कि उसको क्यों दी, उसको नहीं देनी चाहिए थी ये। तो आदमी अल्लाह की तकसीम पर, अल्लाह की देन पर एतराज करता है और एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक तो हसद करता है और दूसरा अल्लाह की देन पर, अल्लाह की तकसीम पर गोया एतराज करता है, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और हसद इतना खतरनाक गुनाह है कि हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि मैं सबको राजी कर सकता हूं, सबको राजी कर सकता हूं, लेकिन हसद करने वाले को कभी राजी नहीं कर सकता। यानी हसद करने वाले का दिल इतना सख्त हो जाता है, हसद करने वाले का दिल इतना काला हो जाता है कि आदमी उसको राजी नहीं कर सकता। हजरत माविया जैसे इतने बड़े आदमी, इतने जकी आदमी, इतने जहीन आदमी, इतने अल्लाह वाले आदमी, सहाबी रसूल है, वो कहते हैं कि मैं सबको राजी कर सकता हूं लेकिन हसद करने वाले को राजी नहीं कर सकता। तो जरा सोचें कि हसद करना कितनी खतरनाक चीज है, कितनी खतरनाक चीज है। और हसद करने वाला अक्सर देखा गया है कि दूसरे की तकलीफ पर वो राजी रहता है, दूसरे की तकलीफ पर खुश होता है, दूसरे की तकलीफ पर वो खुश होता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो आदमी दूसरों की तकलीफ पर खुश होता है अल्लाह ताला बिलाखिर उसको उसी तकलीफ में मुबतला कर देते हैं, उसी तकलीफ में मुबतला कर देते हैं। इसलिए किसी आदमी की तकलीफ पर, किसी आदमी की मुसीबत पर हमें हंसना नहीं चाहिए, किसी आदमी की मुसीबत पर और किसी आदमी की तकलीफ पर हंसना नहीं चाहिए कि हो सकता है कि वो वार हम पर भी हो जाए, हो सकता है कि वो तकलीफ लौट पर हम पर भी आ जाए। और खुदा का ये निजाम है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आदमी किसी पर, किसी की तकलीफ की वजह से हंसता है तो अल्लाह ताला बिलाखिर उसमें उसको मुब्तला कर देता है। ये बड़ा संगीन गुनाह है, बड़ा संगीन गुनाह है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ला यशमियान फी क़ल्बी मोमिन, मुसलमान के दिल में दो चीजें कभी जमा नहीं हो सकती, दो चीजें कभी जमा नहीं हो सकती, एक शिर्क और दूसरा हसद मुसलमान के दिल में कभी जमा नहीं हो सकता। ये बड़ी खतरनाक चीज है। मुसलमान के दिल में हसद हो ही नहीं सकता, मुसलमान के दिल में कभी हसद हो ही नहीं सकता, ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए हमें चाहिए कि हसद से बचने की कोशिश करें। हसद एक मौलाना इस्माइल साहब ने एक वाक्या लिखा है, एक हिकायत लिखी है। अब हिकायत इसलिए होती है कि सच्चा वाक्या तो होता नहीं है, अलबत्ता लोगों को नसीहत करने के लिए वो हिकायत बनाई जाती है ताकि इसकी वजह से, इसके जरिए लोगों को कोई नसीहत मिले। उन्होंने एक हिकायत लिखी है उर्दू की तीसरी में कि एक बहुत बड़ी चरागाह थी, उस चरागाह में दो जानवर थे, एक घोड़ा और एक हिरन। घोड़ा और हिरन दोनों उस चरागाह में, एक बड़ी चरागाह में चढ़ते थे और आराम से रहते थे दोनों, एक दूसरे की ऐश में खुश थे, अपनी जिंदगी पर खुश थे, अपने हालात में खुश थे और अपने मगन में रहते थे। कई साल इस तरह गुजर गए। अब एक मर्तबा की बात के उन दोनों में एक दूसरे के बारे में हसद पैदा हो गया, दोनों में हसद पैदा हुआ। अब दोनों ने इस बात की ठानी कि इतनी बड़ी चरागाह है, जंगल था, जंगल में चरागाह थी जिसमें जानवर चरते थे, वो पूरी चरागाह जितनी बड़ी थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी, वो दो ही जानवर उसमें रहकर चरते थे और अपनी जिंदगी गुजारते थे। अब दो जानवर के लिए इतनी बड़ी चरागाह, तो आराम से और मोहब्बत से रहते, प्यार से रहते और अपनी जिंदगी बसर करते। लेकिन वक्त ऐसा आया कि वो दोनों एक दूसरे पर हसद कर बैठे। हिरनी चाहती थी कि मैं किसी तरह यहां से घोड़े को भगाऊं, और घोड़ा चाहता था कि मैं किसी तरह यहां से हिरण को भगाऊं। हिरण होता है बड़ा, बहुत बड़े बड़े हिरण भी होते हैं। तो इन दोनों ने एक दूसरे पर वार करना शुरू किया, एक दूसरे पर को हटाने की कोशिश की, लेकिन दोनों मजबूत थे, ताकतवर थे, दोनों चरागाह छोड़ने के लिए तैयार थे। एक मर्तबा की बात की कि इंसान वहां से गुजरा, घोड़े की उससे मुलाकात हुई, घोड़े ने उससे बात की कि ये मेरी चरागाह है, मैं इस चरागाह में हम दो रहते हैं, लेकिन मुझे उससे अनबन हो गई है हिरण से, मैं उसको हमारी इस चरागाह से निकाल कर इस पूरे इलाके पर मैं कंट्रोल और कब्जा करना चाहता हूं, तू मेरी मदद कर। इंसान ने कहा ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, कोई हर्ज नहीं, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तेरे ऊपर बैठकर उसको भगाऊंगा, मैं तेरे ऊपर सवार होऊंगा और तेरे पर सवार होकर उसको भगाऊंगा। तो घोड़े ने कहा कि ठीक है, मेरे ऊपर सवार होकर उसको तू भगा सकता है। फिर उसने कहा कि तेरे पर अगर बैठूंगा तो तुझे नकील की भी तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि नकील से और लगाम से ही तू तो आगे पीछे होगा, इधर उधर लगाम से ही होता है घोड़ा। तो उसने कहा ठीक है, मेरे अंदर लगाम भी डाल दे, क्योंकि उसके ऊपर जुनून सवार था, हसद था, बुग्ज था, कीना सवार हो गया था, एक हसद के जुनून, हसद की आग उसके अंदर जल रही थी। तो उसने कुछ भी नहीं सोचा, बस मेरा सामने वाला मरना चाहिए, बस मेरा सामने वाला मरना चाहिए। तो उसने इंसान को कहा ठीक है, तुम मुझे मेरे अंदर लगाम लगा दे। उसने उसको नकेल डाली, नकेल डालकर उसके ऊपर सवार हुआ और सवार होकर हिरण जो था उसको भगा दिया। हिरण वहां से भाग निकला और पूरा का पूरा इलाका अब सिर्फ घोड़े के पास हो गया। घोड़े ने कहा कि ठीक है जनाब, हजरत इंसान तूने मेरी बहुत मदद की, अल्लाह तुझे बहुत उसका बदला देवे, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मेरी कभी जरूरत पड़े तो कभी मेरा मुझे याद कर लेना। इस तरह की बातें कही, अब आप जा सकते हो। घोड़े ने कहा अब आप जा सकते हो। तो इंसान ने कहा अब कहां जाऊं, अब तो मैं तेरे ऊपर बैठ भी गया हूं, तेरी नाक में नकील भी डाल चुका हूं और मैंने तेरे ऊपर सवार होकर सवारी करने और चलने का बहुत मजा ले लिया है, मुझे इस बात का इल्म हो चुका है कि तेरे ऊपर सवारी करने से बड़े फायदे होते हैं, तेरे क्या क्या फायदे हैं मुझे मालूम हो चुके हैं, अब मैं तुझे छोड़ने का नहीं, अब मैं तेरा मालिक हूं और तेरे साथ ये पूरी चरागाह का मालिक मैं हूं। उस वक्त घोड़े ने कहा, शायद मौलाना इस्माइल साहब ने लिखा कि जब तक के मिलाप का सबक याद रहा बस्ती में हर शख्स दिल शाद रहा, जब रश को हसद ने डाली फूट उनमें तो दोनों में से एक भी ना आबाद रहा। तो यह होता है कि हसद की वजह से आदमी बहुत बड़े बड़े नुकसान कर बैठता है, बहुत बड़े बड़े नुकसान कर बैठता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि इन चीजों से बचने की कोशिश करें और बहुत ही एहतियात करें और इसको अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें। हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी उसके अंदर तीन बातें नहीं होगी, तीन गुना नहीं होंगे, तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देगा। मर के जब अल्लाह की तरफ अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा تو تین چیزیں اس کے اندر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. وہ تین گناہ کون سے ہیں؟ ایک شرک, آدمی مسلمان کے اندر اگر شرک نہیں ہوگا. دوسرا کہ وہ ساحر یعنی سحر کرنے والا نہیں ہوگا, اور حاسد حسد کرنے والا نہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اتنی بڑی بات ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے بچیں. حسد بہت بری چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں سے بچتے رہو. ولا تحاسدوا, آپس میں حسد نہ کرو. ولا تباغضوا, آپس میں بغض نہ رکھو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق اختیار کریں. اخلاق کی ہمارے اندر بہت کمی ہے, اور نیت کر کے اٹھے انشاءاللہ میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں گے, پیار سے رہیں گے. کل میں نے دو چار باتیں آپ سے عرض کی کہ آدمی کے اندر سے کینہ نکلنا چاہیے, میل نکال دینا چاہیے, محبتیں بھرنی چاہیے, ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنا چاہیے, ایک دوسرے کی عزت کو نیلام نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے, نہ کوئی بات رکھنے کا سلیقہ ہے. آدمی کو چھلی کر کے رکھ دیتا ہے. چھلی کر چھوٹی چھوٹی باتوں میں آدمی کو بڑی بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑوں کا سامنا کرتے ہیں, بڑے بڑوں کے سامنے بولتے ہیں, بڑے بڑوں کی عزتیں اچھالتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ان جوانوں کو کہ ہمارے بڑوں کا احترام کریں, بڑوں کا ادب کریں, انہی بڑوں کی ماتحتی میں ہم آگے بڑھنے والے. اور دیکھیں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کا مان کر چلے اور چھوٹے نے ان کی عزت کی احترام کیا, تو آج وہ پورا کا پورا علاقہ خوشحال ہے, بہت خوشحال ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی سے نواز دیا ہے کیونکہ بڑوں کا مان کر چلے. تو جس بستی میں, جس سماج میں بڑوں کا مان کر چلنے کی اور بڑوں کی عزت کرنے کی, بڑوں کا احترام کرنے کی عادت ہوتی ہے, بڑوں کا احترام کرنے کے اوصاف ہوتے ہیں, ہمیشہ وہ قوم اور وہ برادری, وہ سماج ترقی کرتا ہے. اور جس قوم میں ٹانگ کھینچنے کی عادت ہوتی ہے, اور جس قوم میں بڑوں کو ذلیل کرنے کی عادت ہوتی ہے, جس قوم میں بڑوں کی نہ ماننے کی عادت ہوتی ہے, وہ قوم ہمیشہ ذلیل ہوتی ہے, خوار ہوتی ہے اور تباہ ہوتی ہے. اس لیے ہمارے بڑوں کی مان کر چلیں, علماء کی مان کر چلیں, دعوت و تبلیغ کے ساتھی جو بڑے بڑے ان کے مان کر چلیں. ہمارے معاشرے میں بہت بڑے بڑے بدھی جیوی لوگ ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئے ہیں, وہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, ان کی صلاحیتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسا نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بگڑ کر ان کو, بہت سارے لوگ ایسے تھے ہمارے معاشرے میں جو ہماری برادری کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے, مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کچھ کرنا چاہا اور کچھ ترقی بھی کی, کچھ کام کر کے آگے بھی نکلے, لیکن ایک کا کام نہیں ہوا, دوسرے کا ایک کا کام ہو گیا, دوسرے کا نہیں ہوا. جس کا کام ہوا وہ تو اپنے کام پہ لگ گیا, لیکن جس کا کام نہیں ہوا وہ ان کے پیچھے لگ گیا, اور ایسا پیچھے لگا کہ وہ جو لوگ تھے بیچارے تھک ہار کر بیٹھ گئے. آج ان کو بلانے جاتے ہیں کہ آؤ, آپ نے بہت کام کیا ہے, بہت اچھے اچھے کام کیے, تو کہتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بس ہمیں معاف کیجئے, ہم بس اس کام کو آپ کیجئے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, پیٹھ کے پیچھے ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ساری ہم رہنمائی کریں گے, ڈائریکشن دیں گے, کام آپ کیجئے, ہم نہیں آئیں گے. ہم اس میں پڑھ کر ہم نے جان لیا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنی مصیبتوں کا تخان سامنا کرنا پڑتا ہے, کتنے لوگ ذلیل کرتے ہیں, کتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں. اب بتاؤ ان لوگوں, جن لوگ, ایک آدمی نے ان لوگوں کے ساتھ برا بھلا کیا تو وہ لوگ بیٹھ گئے, پوری برادری کا نقصان ہو گیا. بڑے بڑے ایسے ایسے بھی لوگ تھے, مجھے کہنے والے نے کہا کہ ہمارے پاس آج بھی آفر ہے یہ جگہ. اس وقت یہ کیپسول ہماری خالی تھی, اس میں زیادہ پلوٹ بکے نہیں تھے, تو آفر کرنے والوں نے, باہر کے آفر کرنے والوں نے ان سے آفر کی کہ یہ جگہ پوری لے لو, ہاسپٹل بنانے کی ذمہ داری ہماری. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آفر آئی تھی تو لے لینی چاہیے تھی, یہ موقع سنبھال لینا چاہیے, اچھا چانس تھا. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم پہلے بھی بڑے اچھے اچھے کام کر چکے ہیں لیکن بدنامیاں بہت آئی. میں کیا کہوں, میں کیسے کہوں उन्होंने ये अल्फाज कहे, इस बिरादरी, क्या इस बिरादरी, ये अल्फाज कहे। मैं बोलते भी मुझे भार लगता है, लेकिन मजबूर हूं मैं कहने के लिए, यहां आपके सामने ये बात रखने के लिए मजबूर हूं। इन्होंने कहा इस बिरादरी ने बहुत तकलीफ की, हमारा पूरा पूरा धंधा चौपट कर दिया। बड़े बड़े हमारे धंधे चलते थे, बस किसी का हमसे काम नहीं हुआ। उसने फिर मुखबिरी करनी शुरू की, कहीं कुछ दंगा होता था हमारा नाम लिखवा दिया, कहीं कुछ होता था रेड पड़वा दी, हमारे पूरे पूरे धंधे चौपट कर दिए, पूरे पूरे धंधे चौपट कर दिए। बस कसूर कितना कि एक आदमी का हमसे काम हुआ, 10 आदमी आए काम कराने के, 6-7 आदमियों का काम हो गया। हमारी कैपेसिटी इतनी थी, 4 आदमियों का काम नहीं हो गया, नहीं हुआ तो 4 आदमी हमारे पीछे पड़ गए, और ऐसे पीछे पड़े कि हम थक हार कर बैठ गए। और ये ट्रस्ट तो गया, ये सब कुछ गया, खिदमत हमारे हाथ से गई, हमारे धंधे भी चौपट हो गए। इसलिए हमने उनसे कहा कि बस किसी और के पास जाइए, किसी और के पास जाइए और उनसे काम करवाइए। हमने इनको ना कह दिया तो वो चले गए। उन्होंने कहा कि विश्वास उन पर हम पर था, इसलिए हमने ना कहा तो वो चले गए। ऐसे ऐसे भी लोग आए कि जिन्होंने कहा कि 200 मकान हम बनाएंगे, 200 मकान हम बनाएंगे, हमारे रुपये से बनाएंगे, और तकरीबन 8 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए बैग में खुद लेकर आए। और इन्होंने सब कुछ चाहा कि करें, लेकिन हमारी बिरादरी की तरफ से कुछ हालात ऐसे बने कि सबके सब रुपए लेकर चले गए। और मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, जरूरत थी, अल्लाह ने इनकी किस्मत में लिखा था, वहां चले गए और 200 से ज्यादा 400 घर इन्होंने वहां बना दिए। अगर यहां वो लोग ऐसा न करते, कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीजी न की होती, हमारी हसद ने इनको कि इनको ये क्यों आगे हैं, हम क्यों नहीं, ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं, इनको क्यों दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं, बस ये हसद, इनका नाम क्यों आगे हो, ये अगर ये बनाएंगे तो इनका नाम बहुत उछलेगा, इनका नाम, इनका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा गोधरा में, और गोधरा वाले इनकी बड़ी इज्जत करेंगे, इनकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। बस इसी हसद ने, इसी जलन ने इन उन लोगों ने ऐसा मामला किया कि वो लोग बैग उठाकर चले गए और दूसरी जगह वो सारे घर बना दिए। अभी बहुत दूर की बात नहीं करता हूं, 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, बहुत दूर की बात नहीं है, 2 साल पहले, 2-3 साल। तो ऐसा है, तो हमें चाहिए जो काम करते हैं इनको करने दें, हमारे बड़ों का एहतराम करें, जो काम करते हैं करने दें। अरे कुछ नहीं तो 50% क्या 60% तो काम करेंगे, कुछ नहीं, कुछ न करे, कोई कुछ भी ना करे, इससे तो बेहतर है, इससे तो बेहतर है जो कुछ नहीं करते, इससे तो बेहतर है 50% या 60% या 80%, 90%, 100% काम कर दे, वो तो इनसे तो अच्छे हैं। तो इनको अच्छा जानकर इनका साथ सहकार दो, कुछ नहीं कर सकते जिनकी तारीफ करो, कुछ नहीं कर सकते तो तारीफ भी ना कर सको तो कोई इनकी बुराई करे तो भाई कहो कि भाई चाहे कुछ भी है अच्छा काम कर रहे, कुछ भी है अच्छा काम कर रहे। तो बहुत सारे लोग हमारे में यही है, ये बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, इनको कोई ऐसा आदमी चाहिए कि हमें लेकर चले, हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए कि हमें बताएं कि ये काम करो। बहुत सारे लोग अब पूरी जमातें आती है हमारे पास कभी कभी कि हमें ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। कभी कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं बेचारे थकार कर बैठ जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इनको डरा देते हैं कि वो बैठ जाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं होती, जब इस काम में लगे हैं तो थोड़ी बहुत ऊंचनी चाहिएगी, 19-20 तो जरूर हुआ करेगा। ऐसा थोड़ी है कि थकार कर बैठ जाना, डर कर बैठ जाना, घबरा कर बैठ जाना, ये हालात तो पहले से अल्लाह के नबी पर हालात आए हैं, तो हालात से घबरा कर बैठना नहीं चाहिए, हालात से घबरा कर बैठना नहीं चाहिए। जो लोग बैठ जाते वो भी गलत है, वो भी गलत है। क्यों? इसलिए कि जब थक हार कर किसी से घबरा कर बैठ गए तो आज मैं बैठा हूं, उससे डर कर मैं बैठ गया तो उसकी हिम्मत खुलेगी, वो फिर दूसरे को सताएगा, वो बैठा तो फिर उसकी और ज्यादा हिम्मत खुलेगी तो 3-4 के पीछे और पड़ेगा। तो आदमी, एक आदमी का मुझे बहुत अच्छी बात लगी, मैंने उसको कहा कि भाई देखो, वो आदमी आपके पास 30,000 रुपये मांगता है और ऐसा ऐसा वो सबूत देता है। तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब बिल्कुल गलत है, मेरे पास प्रूफ है, वो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं मांगता, हमारा ऐसा कोई व्यवहार भी नहीं हुआ, हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, बस गले पड़ा है। और मैं इज्जतदार आदमी हूँ, तो वो सोचता है कि मेरी इज्जत को वो उछालेगा तो मैं जल्दी से उसको 30,000 रुपये दे दूंगा कि भाई तेरी जबान बंद कर दे। ऐसी बात नहीं मूर्ति साहब, 30,000 के लिए मैं 3,00,000 रुपये खर्चा करूँगा, लेकिन 30,000 तो मिले ही दूंगा उसको, आराम के क्यों दूंगा। मुझे 3,00,000 रुपये खर्चा करना पड़ेंगे तो मैं करूँगा, और मुफ्ती साहब मैं कहता हूँ आपको वो करूँगा, लेकिन 30,000 रुपये मैं नहीं दूंगा उसको। आज उसके 30,000 मैं दूंगा इसको, कल दूसरे पर वार करेगा वो, दूसरे से तीसरे पर वो वार करेगा। इस वार को रोकने के लिए मैं 3,00,000 का मुझे खर्चा करना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन 30,000 तो मैं नहीं दूंगा। तो ये आदमी अड़ीखम रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, करने वाले तो करें, बदनाम करने वाले बदनाम करेंगे, सताने वाले सताएंगे, आक्षेप लगाने वाले आक्षेप भी लगाएंगे, लेकिन हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर पावर होना चाहिए कि हम इन हालात का मुकाबला कर सकें। जब आदमी सब्र करता है, जब आदमी बर्दाश्त करता है तो उसके सब्र की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि पहाड़ के अंदर भी वो सुराख कर देता है, पहाड़ के अंदर भी वो पहाड़ के सामने खड़ा हो जाए तो पहाड़ भी टूट जाए। अल्लाह इतनी ताकत पैदा कर देता है, बड़े बड़े लोग उसके सामने जेर हो जाते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब का मैंने बयान सुना, इनके बयान सुनने चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब बहुत सारे अच्छे अच्छे उलमाए किराम है जो बयान बहुत अच्छे बयान कर दें। मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि मुझे सताने वालों ने बहुत सताया, कभी भी मैंने उसके एतराज का जवाब नहीं दिया, कभी भी मैंने बदला नहीं लिया, मेरी जिंदगी में कभी बदला नहीं रहा। बहुत आलात आए मुझ पर, बहुत आलात आए मुझ पर, सबर किया, कभी किसी का आज तक जवाब नहीं दिया, कभी भी जवाब नहीं दिया। वो जो भी अच्छा काम करते हैं उन पर एतराज आज भी होता है। वो गए जो ये मुजरा करने वाले, ये जीना कराने वाले, जो अड्डे होते ना, बड़े बड़े अड्डों में वो गए, उन औरतों को जाकर समझाकर लाए उनको अपने मदरसे में। एक दिन ऐसा रखा कि ये जितनी भी जीनाकारी करने वाली ये मंडियों में चकलों में जीनाकारी कर, सबकी दावत हमारे यहाँ मदरसे में बुलाकर इनको खाना खिलाया, इनका एहतराम किया, तो उनके दिल में एक बात बैठी कि हमारा भी कोई इज्जत करने वाला है, माशरे में हमारी भी कोई इज्जत है। उनके दिल पर एक चोट लगी, यहाँ हमारी भी कोई इज्जत है कोई। तो कितनी औरतों ने उनके सामने रो रो कर तौबा की, कितनी औरतों ने शादियां कर ली, कितनी औरतें आज बैठी हुई हैं कि कोई हमें भी ले जाए तो इन काम से हम छुटकारा पा लें। हजरत कहते हैं कितनी औरतों ने ऐसा कहा कि हजरत हमारा वजीफा बांध दीजिए, हम इस तरफ कभी नहीं जाएंगे, हम कुछ पैसों के लिए वहां जाती है, हमारा कोई कमाने वाला नहीं, क्या करें, मजबूर है। हजरत कहते हैं हमने कितनी औरतों का वजीफा बांध दिया, वो उस जगह से वापस आ गए। तो इस पर भी हजरत जो भी नेक अच्छा काम कर रहे उस पर एतराज जरूर होता है, तो हजरत कभी जवाब नहीं देते। तो अल्लाह ताला ने इनको कहां से कहां पहुंचा दिया, आलमी शख्सियत बना दिया, दुनिया में सबसे बड़ी इज्जत अब आजकल है तो हजरत मौलाना तारिक जमील साहब की। किसने किया? यही कि एतराज का जवाब नहीं दिया, सब्र करते रहे। किसी ने कुछ आक्षेप मिला, जवाब नहीं दिया, इल्जाम मिला, जवाब नहीं दिया, अपना काम करते करते आज आलमी शख्सियत। बहरहाल तो मैं अर्ज यूं कर रहा था कि हसद इतनी खतरनाक चीज है कि आदमी को इससे बचना चाहिए, और उसके बचने की आसान तरीका मैंने बताया, वो तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल अब आगे इंशाल्लाह सूरह नास की तफसीर आइंदा कल थोड़ी बहुत आपके सामने अर्ज करूंगा, और कल जुमा का दिन है, जुमा के दिन दुआ कबूल होती है, और इसके अलावा खास करके मगरिब का वक्त करीब हो दुआ कबूल होती है, और फिर इफ्तारी का वक्त करीब हो दुआ कबूल होती है, और आदमी रोजे से हो तो दुआ कबूल होती है। इंशाल्लाह आइंदा कल दुआ करा दी जाएगी। सुभान अल्लाह।